बीबीसी इंडिया बोल 13 जुलाई दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। दुनिया की नंबर वन क्रिकेट टीम भारत जो मानी जा रही थी इस बार विश्व कप की प्रबल दावेदार, ग्रुप स्टेज में शीर्ष पर रहने के बावजूद सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से हुई बाहर। कहां हुई गलती और कौन है इस हार का जिम्मेदार, यही है आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी राय। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। नेपाल और पूर्वोत्तर भारत में बारिश के कारण आई बाढ़ से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मानसून के कारण भूस्खलन हो रहे हैं और कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि अब तक कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है और एक दर्जन से अधिक लोग लापता हैं। वहीं भारत के असम में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के कारण लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आने वाले समय में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। अमरीकी नियामकों ने फेसबुक पर $5 अरब यानी लगभग 34,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक यह जुर्माना सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ डेटा गोपनीयता उल्लंघन के मामले में चल रही जांच के निपटारे के लिए लगाया गया है। संघीय व्यापार आयोग उस मामले की जांच कर रहा है जिसमें राजनीतिक परामर्श कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर गलत तरीके से फेसबुक के 8.7 करोड़ यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करने के आरोप हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि फेसबुक पर की गई कार्रवाई नाकाफी है। तेज तूफान बैरी के कारण अमरीकी राज्य लुइजियाना के तटीय इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो गई है, जो बाद में और बढ़ सकती है। इस कारण समंदर में तूफानी लहरें उठने की और न्यू ऑर्लिंस शहर में भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। इसी इलाके में 14 साल पहले चक्रवाती तूफान कैटरीना ने तबाही मचाई थी, जिससे शहर का 80% हिस्सा पानी में डूब गया था। लुइजियाना के गवर्नर का कहना है कि न्यू ऑर्लिंस हालात से निपटने के लिए तैयार है। स्थानीय रेडियो स्टेशन के पैट्रिक आंद्रेज ने बीबीसी से कहा, न्यू ऑर्लिंस के लिए बीती रात बड़ी अजीब रही। सब कुछ बंद था। हरिकेन कैटरीना के बाद से लोग हर तूफान आने पर या सेंसर के एक्टिव होने पर सावधान हो जाते हैं और सुरक्षित जगह पर जाकर हालात से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये थे अमेरिका के न्यू ऑर्लिंस के पैट्रिक आंद्रेस के शब्द। व्यापार को लेकर छिड़े विवाद में जापान और दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर एक दूसरे के लिए कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे दोनों देशों के बीच पनपे विवाद के कारण दुनिया भर में माइक्रोचिप्स और स्मार्टफोनों में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया के हाईटेक सेक्टर के लिए सामान निर्यात किए जाने पर जापान की ओर से लगाई गई पाबंदियों पर बातचीत के लिए शुक्रवार को एक बैठक हुई थी। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उसने मीटिंग में पाबंदियों को हटाने के लिए कहा, मगर जापान का कहना है कि उससे ऐसी कोई गुजारिश नहीं की गई। जापान के वित्त, कारोबार और उद्योग मंत्री जुन इवामात्सु ने कहा कि वह दक्षिण कोरिया की टिप्पणी से हैरान है। हमने निर्यात को लेकर किए गए सभी सवालों का जवाब दिया है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से हम हैरान हैं। दोनों पक्ष जो कह रहे हैं उसमें फर्क है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रतिक्रिया दक्षिण कोरिया ने दी है वह समझौते के अनुरूप नहीं है। ये थे जापान के उद्योग मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिणी सोमालिया में एक होटल में हुए हमले में कई विदेशी नागरिकों समेत कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है। जुबालैंड प्रांत के प्रेसिडेंट का कहना है कि शुक्रवार को किस्मायो शहर में हुए हमले में केन्या, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के नागरिकों की मौत हुई। प्रशासन का कहना है कि एक होटल के बाहर आत्मघाती कार हमले के बाद अल शबाब समूह के 3 बंदूकधारी अंदर घुस गए। इस हमले में मारे जाने वाले लोगों में पत्रकार, स्थानीय राजनेता और कारोबारी शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद और सादर अभिवादन हमारे श्रोताओं का।
बिल्कुल, और दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, क्रिकेट विश्व कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर भारत जिस तरह टूर्नामेंट से बाहर हुआ, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल लेकर हमारे कई श्रोता टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले मलय जी, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने जो टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, एक ऐसे विकेट पर जहां बारिश हो रही थी, तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलने की पूरी उम्मीद थी और भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग भी की, वहाँ न्यूजीलैंड के कप्तान का पहले बैटिंग करने का निर्णय कितना सही था?
बिल्कुल सही निर्णय था, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, अगर आपको याद हो तो विराट कोहली ने भी कहा था कि अगर हम भी टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी ही करते। ये जो पिच थी बिल्कुल नई पिच थी, कहा जा रहा था कि इस पे कोई खेल बहुत दिनों से हुआ नहीं था और ये ढकी हुई थी, ड्राई पिच थी और मौसम में हालांकि थोड़ी नमी थी और आसमान पे बादल थे, तो कुल मिलाकर जो एक देखने से, प्रथम दृष्टि में देखने से जैसा लगता था कि ये पिच अच्छी है, मगर मुझे तो वही बात याद आती है कि हमें हार का कोई गम न था, गम था तो बस यही कि जहां किश्ती डूबी मेरी वहां पानी बहुत कम था।
हालांकि यहां तो जमकर पानी बरसा। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने भारत को सोची समझी रणनीति के तहत फंसाया, रणनीति ये बनाई कि 35 ओवर तक विकेट बचाकर खेलो, चाहे रन कितने ही कम क्यों ना बने और आखिर के 15 ओवरों का फ़ायदा उठाया जाए?
बिल्कुल उनका ये मानना था और केन विलियमसन ने ये बात साफ साफ कही, और एक अच्छे कप्तान की जो बात है वो ये था कि हम अगर इस विकेट पर 240-250 रन भी बना लेंगे, इस पे 300 नहीं बनने वाले, क्योंकि सूखी विकेट है, टर्न करेगी और इसमें थोड़ी सी निप भी होगी क्योंकि सीम से मदद मिलेगी, जिस प्रकार का वहाँ वेदर था उसमें, तो उनका ये मानना था कि 240-250 रन काफ़ी होंगे, इसलिए बेहतर ये है कि पहले आप वहाँ टिकें, अपने सिरे को छोड़े चोर को संभाल कर रखें और उसके बाद फिर रन बनाएं। तो यही इसी रणनीति के तहत उन्होंने काम किया और वहीं हमारे खिलाड़ी चूक गए।
दीपक जसरोटिया शीशे के उस पार बैठकर कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि टेलीफोन बज रहे हैं लगातार। पहले श्रोता आज इंडिया बोल में कौन है हमारे साथ?
जी नमस्कार संदीप जी, मैं कर्मेंद्र बोल रहा हूँ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से।
स्वागत है आपका।
जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल से जो हम मशक्कत कर रहे थे मिडिल ऑर्डर, हमें पता था सभी को कि तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं है और वही कोलैप्स हमको देखने को मिला। हालांकि इसकी हिंट हमें वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के मैच में मिली।
लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश कीजिए यदि संपर्क इनसे जुड़ सके। अगले श्रोता के पास चलते हैं, कौन है हमारे साथ इस समय?
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
हेलो, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ धनबाद झारखंड भारत से।
बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र जी।
सर जैसा कि अभी आपके एनालिसिस पर मैं गया, एक क्लियर बात थी 1987 का मैच मुझे याद है, इंग्लैंड से जिस समय क्रिकेट का मैच भारत और वेस्ट इंग्लैंड का हो रहा था, 20 ओवर तक इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयरों ने 50-52 रन ही बनाए थे और आज स्थिति हमारे रवि शास्त्री उस मैच में थे, संजय बांगर क्या कह रहे थे, नंबर 3 और नंबर 4 पर हमारे नए अनुभवहीन क्रिकेटर को भेज दिया गया, पंत को, हार्दिक पांड्या को, ये क्या इन्होंने किया, विराट कोहली क्या कर रहे थे। सबसे बड़ा आश्चर्य और सबसे बड़ा दुख का बात है कि 7 नंबर पर धोनी को भेजा गया, हमारे लिए इतनी शर्म की बात है सर, जिसे कि हमें डूब मरनी चाहिए थी, जैसे कहा कि मेरी किश्ती कहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, इन्हें पता था मौसम क्या है, वर्षा हुई। और ये सर एक चीज अच्छी बात है, जब इनको 23 बॉल में उन्होंने 28 रन बना लिए, 211 के बाद 239 रन बनाए, तो तो उस समय समझनी चाहिए विकेट उन्हें गमाई थी, क्या जरूरत थी इन्हें चौवा छक्का मारने की। और दूसरी बात ये समझे क्या कि 35 से 40 ओवर में हम 240 रन बना लेंगे। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ। और ये जो है से 221 पर ही अटक गए। आज अगर धोनी ने उस समय नहीं रहते, और दुर्भाग्य रहा हमारे भारत के लिए कि रन आउट हो गए, अगर धोनी नहीं रहते तो ये और 200 में ही सब समझ जाते।
बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, झारखंड से मेरे कई सवालों को इन्होंने अपनी बात में समेट लिया मले जी।
हाँ, और इनकी जो निराशा है और इनका जो आक्रोश है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी है शैलेंद्र जी कि जो टीम जीती है वो टीम बेहतर टीम थी उस दिन, और क्रिकेट का खेल है, जीत हार लगी रहती है, लेकिन जो टीम सबसे ज़्यादा अंक लेकर अपने ग्रुप में सबसे ऊपर थी, टेबल्स में, तालिका में, अंक तालिका में सबसे ऊपर थी, उसको आप कुछ तो श्रेय देंगे। हाँ, इससे पहले भी जो श्रोता ने फ़ोन किया था संदीप जी, और इन्होंने भी, दोनों ने एक बात उठाई है मिडिल ऑर्डर की, ये बात बड़ी जायज़ है। पिछले 24 महीनों में हमने 24 डिफरेंट प्लेयर्स को चौथे से सातवें स्थान के बीच में एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया है, चौथे और सातवें के बीच, और चौथा स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे याद आता है कि किसी ज़माने में चौथे स्थान पर गुंडप्पा विश्वनाथ, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऐसे लोग जाते थे जहां अगर आपकी शुरुआत धीमी हुई है या गड़बड़ हुई है तो वो थाम लेते थे, उस छोर को थामते थे और उसके बाद रन बनाते थे। तो एक तो ये बात है कि हाँ ठीक है, हमारे मिडिल ऑर्डर में कमी थी। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि धोनी को सातवें नंबर पर क्यों भेजा, वो बात भी समझ में आती है, बहुत जायज़ इनकी आलोचना है, इसमें नाजायज़ बात कुछ नहीं है, क्योंकि जब स्थिरता प्रदान करनी होती है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं धोनी ने तेज़ गति से रन नहीं बनाए। अगर धोनी तेज़ गति से रन बनाने में लग जाते तो शायद जडेजा का बल्ला नहीं बोल पाता जिस तरह से बोला, क्योंकि जडेजा को लगता था कि मेरा एक बड़ा साथी एक सिरे पे खड़ा है और उसने छोर संभाल रखा है। तो इसलिए इनकी बात में दम है, मगर कुल मिलाकर हाँ एक बात तो ज़रूर है कि रवि शास्त्री हो या कोई हो, टीम प्रबंधन को ये जिम्मेदारी लेनी होगी और ये सोचना होगा, जिम्मेदारी से ज़्यादा आगे की रणनीति बनाने के लिए सोचना होगा कि टीम में कैसे स्थिरता लाई जाए।
मले जी, अगले श्रोता के पास चलते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कौन है इस समय हमारे साथ? हेलो।
हाँ जी, कर्मेंद्र
जी, जी स्वागत है आपका, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी करें।
जी जी, मेरे मले जी से कुछ क्वेश्चन में, पहले मैं एक दो बात कर लूं। मेरा ये भी कहना था, जैसे कि हम इतने समय से देख रहे थे मिडिल ऑर्डर को, और हम एक समय में चार चार विकेट कीपर को खिला रहे थे, जरूरी ये था कि तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाजों को अगर वहाँ जगह दी जाती, जैसे कि मेरा मले नीरव जी से सवाल है, क्या नंबर 4 पे चेतेश्वर पुजारा पर टीम प्रबंधन की नज़र क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वो तकनीकी रूप से सक्षम है और स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था उनसे कि अब आगे के लिए, अब जो हुआ सो हुआ, क्यों ना हमको 5 विशुद्ध बॉलरों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया की ताकत बॉलिंग लाइन हो गई है, बैटिंग को अगर अपन ना देखें तो क्यों ना हम 5 विशुद्ध बॉलरों को खिलाएं और एक 5 बल्लेबाज हो और छठा जो प्लेयर हो वो ऑलराउंडर हो, जैसे पंड्या और जडेजा जी।
देखिए, पहले प्रश्न का आपका पहला उत्तर दूं कि जो आपने कहा चेतेश्वर पुजारा पर नज़र क्यों नहीं गई, मेरे ख्याल से टीम प्रबंधन से ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आपकी नज़र अजिंक्य रहाणे पर क्यों नहीं गई, आपकी नज़र अंबाटी रायडू पर क्यों नहीं गई। एक व्यक्ति को आपने वहाँ पर काउंटी खेलने के लिए मजबूर कर दिया, दूसरे व्यक्ति को आपने रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया, तो ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे। और आपने जो सवाल उठाया है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनवैलिड या वो लाजमी सवाल नहीं है। दूसरी बात जो आपने बॉलर्स की बहुत सही फरमाया आपने कि भारत के गेंदबाज भारत को लगातार जीत दिलाते रहे हैं, और टीम में मोहम्मद शमी की कमी बहुत खली इस बार, खासकर वो मोहम्मद शमी जिसने सफ़ेद गेंद से दोनों तरफ से ऐसी स्विंग कराई, जो स्विंग भुवनेश्वर कुमार के हाथ से भी देखने को नहीं मिली जब वो पहली बार आए भुवनेश्वर के घायल होने के बाद और उनको बाहर रखा गया। तो ये सब सवाल तो उठेंगे, लेकिन आने वाले समय में टीम को स्थिरता प्रदान करने के लिए चौथे से सातवें पे कौन कौन बन जाएगा, बहुत ज़रूरी है सोचना। और रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स को, जो एक बॉलर ऑलराउंडर हैं, उनको उनकी भी टीम में जगह बनती है, क्योंकि क्या है कि बैटिंग लाइनअप जितनी डीप होगी, जितनी गहराई उसमें होगी, उतना आपका मनोबल बढ़ता है रन बनाने की। आज पूरी दुनिया जो कह ले, मैं बस एक बात कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब धोनी थे और जब धोनी आए, सबको ये उम्मीद थी कि यही खेवैया नैया पार लगाएगा। चाहे आप बाद में जो भी कह लें, अंत समय तक, धोनी के आउट होने तक, तीन ओवर का खेल बचा रहने तक, सबको यही लग रहा था कि आज धोनी ख़त्म करेंगे इस मैच को, हमारे फेवर में ले जाएंगे।
भले साहब, आपने दो बातों का जिक्र किया, पहले मोहम्मद शमी की चर्चा कर लें। आपने क्या आपको नहीं लगता कि मोहम्मद शमी को दिनेश कार्तिक की जगह टीम में जगह मिलती तो ज़्यादा बेहतर होता? और दिनेश कार्तिक ने विश्व कप में आखिर किया क्या?
ये सवाल, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है और मैं बहुत शिकायत भी नहीं करना चाहता, लेकिन दिनेश कार्तिक को टीम में देखकर मुझे ये हैरत ज़रूर होती थी कि जो अल्टरनेटिव वैकल्पिक विकेट कीपर होता है उसको क्यों टीम में रखा गया है। और मुझे याद है कि जब धोनी बीच में बाहर गए थे एक मैच में, तो उस समय उन्होंने दिनेश कार्तिक को नहीं दी विकेट कीपिंग, उस समय दिनेश कार्तिक को विकेट कीपिंग नहीं सौंपी गई। तो एक विकेट कीपर ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक जब उनकी जगह मिली थी और विजय शंकर को नंबर फोर की जगह दी गई थी, तो ये तो अंत अंत तक टीम लगता है कि जैसे किसी उलझन में रही हो कि क्या है। और जब दिनेश कार्तिक को जगह दी गई और उनसे ये उम्मीद की गई कि थोड़ी स्थिरता प्रदान करेंगे, तो वो चूक गए थे। इससे पहले भी चूके थे, अभी भी चूके हैं। पिछले दो वर्षों में दिनेश कार्तिक का आप एवरेज औसत देखेंगे तो 30 के पार भी नहीं गया, 20 और 25 के बीच में झूलते रहे हैं। तो ऐसे में ये तो सवाल लगे उठेंगे ही।
धोनी का जिक्र कर रहे थे आप, धोनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि शिकायत आम है कि वो बहुत धीमा खेले, उन पर ये आरोप लगता है कि जानबूझकर धीमा खेलते हैं और बाद में चौके छक्के लगाकर मैच को समाप्त करके एक तरह से हीरो बन जाते हैं, जैसे कि उन्होंने आईपीएल के मुकाबलों में हमने देखा। आपको नहीं लगता कि यदि सेमीफाइनल में वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से खेलते तो भारत उस मुश्किल स्थिति में फंसने से बच सकता था जिसमें वो फंस के आके डूब गया?
देखिए, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो आलोचना है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए कि जब आपका टॉप ऑर्डर, आपके चोटी के खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह ढह गए हों, उस वक्त टीम में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो टीम को स्थिरता प्रदान करे, उसको रोक लगाए, विकेट गिरने के इस पूरे सिलसिले पे रोक लगाए। और उस वक्त अगर एक खिलाड़ी खुलकर खेल रहा है तो उसकी नज़र इस बात पे होती है कि जब तक ये खेल रहा है इसको रोको मत, क्योंकि ये इसका ये नेचुरल खेल है, रविंद्र जडेजा का ये नेचुरल खेल है, प्राकृतिक खेल है कि वो मारकर खेलेंगे, तो उनसे रन निकल रहे, निकलने दो, तुम बचे रहो, क्योंकि जब ये आउट होंगे उस वक्त तुमसे ये उम्मीद होगी तुम इसको। देखिए ना, तीन ओवर जब बचे थे और 13 रनों के औसत से रन बनाना था, तो ये धोनी के लिए कोई नामुमकिन काम नहीं था। अगर जडेजा आउट भी हो गए तो बहुत मुश्किल काम नहीं था, वो तो अनफॉर्चुनेट बात ये रही कि धोनी आउट हो गए और ऐसे आउट हुए जैसे कि, और वो आउट लेने को होने को लेकर भी आज तक आलोचना हो रही है, उसकी बहुत तरह की डिबेट्स भी हैं, विवाद भी हैं उसके, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
टोल फ्री नंबर्स पे इस समय हमारे साथ कौन श्रोता हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले।
हेलो
जी,
हेलो,
कौन है हमारे साथ?
मैं जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ, मोहम्मद शफी सर।
शफी साहब, बहुत स्वागत है आपका।
सर, बात यह है कि हार जीत की कोई बात नहीं होती, जो गेम खेलता है वही हार और जीत ये जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन ये पूरे देश को एक दुख भी है कि इतनी बड़ी वर्ल्ड की टीम हमारी थी वो हार गई। लेकिन यहाँ पर कुछ कमियां रह गई। पहली तो ये है कि टीम जो है ये दो भागों में बट चुकी थी और टीम के जो सदस्य थे वो आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। दो नंबर, तीन चार नंबर पर धोनी को खिलाना था 7 नंबर के बजाय, फिर शमी जो नहीं खिलाया ये भी एक बहुत ही इन्होंने गलती की है। बहरहाल हम ये भी कहना चाहते हैं कि हार जीत लगी रहती है, अपना दिल नहीं तोड़ना चाहिए और लोग जो है हमारे देश के ये हौसला तोड़ते हैं, कभी भी टीम का हौसला नहीं।
बहुत शुक्रिया शफी साहब, बहुत शुक्रिया मलय जी। जैसा कि हमारे श्रोता भी कह रहे थे कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है,
ये मैंने शुरू में ही बिल्कुल कहा था।
और आपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, साफ नजर आ रहा था कि जब एक एक विकेट जिस तरह से गिर रहा था, विराट कोहली जो हैं वो शिकायती लहजे में कोच रवि शास्त्री के पास जा रहे थे, और उस पर सितम ये कि वो अब ये कह रहे हैं कि नॉकआउट मुकाबलों में आईपीएल की तरह फॉर्मेट होना चाहिए।
देखिए, विराट कोहली को सबसे ज़्यादा गम और सबसे ज़्यादा दुख अपने विकेट गिरने का था, इसमें कोई शक नहीं। और इस बात को मैं नहीं मानता कि टीम में किसी तरह की आपस में कोई किसी तरह का कोई मतभेद था। ये सब बातें अटकलों के बाद आधार पर कही जा रही हैं, इसमें कोई दम नहीं। टीम एक टीम के रूप में, एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में खेली है, पूरे वर्ल्ड कप में खेली है, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल ढह जाए एक के बाद एक, तो विराट कोहली की जो बेचैनी थी जिसमें वो जा रहे थे रवि शास्त्री के पास, और वो बेचैनी कई बार झलक रही थी, दाहिने बाएं इधर उधर हो रही थी, उस बेचैनी को समझा जा सकता है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक कप्तान। देखिए आज क्या हो रहा है, आज हम बैठकर विराट कोहली और उनकी भूमिका और टीम प्रबंधन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो इस उस टीम से प्यारा और अपने देश से प्यारा खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं होता, चाहे वो विराट हो चाहे कोई भी कप्तान हो, तो उनको भी दोष देना ठीक नहीं। हाँ, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बाद में कालांतर में लगता है कि हाँ हमने सही नहीं किया, जैसे धोनी को नंबर 4 पे भेज सकते थे। एक प्रयोग ऐसा हुआ था कि धोनी को पहले भेजा था, अगर आपको याद हो, और वो नहीं चल पाए थे। उस वक्त सब लोग कहने लगे कि धोनी को पहले बुलाने की क्यों ज़रूरत क्या थी, आपके पास जब विजय शंकर थे तो आप पहले विजय शंकर को बुलाते, तो इस तरह की बातें भी हो चुकी थी। तो ये ज़रूर था, ये कमी कहाँ रह गई कि आपको खुद ही पता नहीं था कि चौथे पांचवें छठे सातवें का क्रम कैसे चलेगा, और उसमें आप अंत समय तक और इस क्रूशियल मुकाबले में नॉकआउट में भी आप प्रयोग करते रहे।
मलय जी, क्या ये सवाल फेसबुक पर, बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर ये कई श्रोताओं ने, पाठकों ने हमसे पूछा है कि क्या टीम का चयन सही था, विराट कोहली हमेशा विकेट को पढ़ने में गलत माने जाते रहे हैं, वो कभी बल्लेबाजों के अनुरूप विकेट पर गेंदबाजों को खिलाते हैं और कभी गेंदबाजों के अनुकूल विकेट पर बल्लेबाजों को खिलाते हैं, और एक महीने पहले से इस मुकाबले को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी कि यहाँ पर तेज़ बारिश होगी, ऐसे में दो स्पिनर्स के साथ जाना कितना गलत रहा?
देखिए, मैं इस बात को कहने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता कि टीम में एक और तेज़ गेंदबाज जब आपके पास था, और जिस तरह से तेज़ गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की ओर से कहर बरपाया, आपने देखा मैट हेनरी क्या ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की, लोग लॉकी फर्गुसन की बात कर रहे थे, मैंने शुरू से कहा था कि मैट हेनरी बहुत घातक साबित होंगे। ऐसे में सफ़ेद बॉल के साथ जो स्विंग शमी ने दिखाई, जो करिश्माई गेंदबाजी उन्होंने की थी इस पिच पर, इन हालातों में जो हालात वहाँ थे, मोहम्मद शमी को जगह दी जानी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और बात है, 4 लेफ्ट हैंडर्स थे न्यूजीलैंड की टीम में संदीप, और लेफ्ट हैंडर्स के लिए जब लेफ्ट हैंड का स्पिनर बोल करता है तो वो लेग स्पिनर बन जाता है, वो ज़्यादा घातक होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि चहल जे ने जो 63 रन दिए, अगर कुलदीप यादव होते तो ज़्यादा कामयाब होती। ये मेरी अपनी भावना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने जो क्रिकेट देखा है, सीखा है, एनालिसिस जो आज तक की है उसके आधार पर मुझे ये लग रहा है। तो ये जो था थोड़ा सा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, लेकिन वो कैप्टन्स कॉल है, वो टीम प्रबंधन की कॉल है। मैं यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल 2 दिन 10 दिन बाद कुछ भी कह लूँ, उस वक्त जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया, और मुझे उनका उनकी इच्छाओं का और उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए।
अच्छा, मैच में 3.5 विकेट कीपरों को खिलाना कहाँ तक सही था? धोनी, कार्तिक, ऋषभ पंत 3 विकेट कीपर हो गए, और आधा विकेट कीपर केएल राहुल आईपीएल में विकेट कीपिंग करते थे, और सभी जानते हैं कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक जो हैं मैदानी फील्डिंग में कच्चे हैं।
इसका बहुत औचित्य तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, जो मेरा अनुभव है उस पूरे अनुभव के हर पन्ने को पलट के देख लिया, मुझे कहीं से इसका औचित्य समझ में नहीं आया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।
एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद हम श्रोताओं को उस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। क्या इस सारे प्रबंधन या कुप्रबंधन के लिए टीम के कोच पर गाज गिरेगी? उससे पहले अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी जी, अपना परिचय दीजिए।
हाँ, मैं पुसद महाराष्ट्र से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ जी। सर
जी, अरुण जी बहुत स्वागत है आपका।
सुनी जी नमस्ते।
जी नमस्ते।
जी मेरा कहना है ये ऐसा उसको लेते तो ऐसा होता, वो उसको खिलाते तो ऐसा होता, ये करते तो ऐसा होता, ऐसा मेरी सोच क्या है, अगर उसी दिन खेल होता जिस दिन पहले दिन हुआ था कंटिन्यूएशन में, तो अपन इंडिया जरूर जीतती सर। मेरा एक ही कहना है, ये आप सोचते बैठिए फिर किसको नहीं लिए, वो चार नंबर पे कौन आया क्या नहीं आया, कौन आया बॉलर अच्छे करे, अपन टॉप पे थी टीम अपनी, नंबर एक पे टीम थी वर्ल्ड कप में, पहले से अच्छे खेलते गए, फिर उस दिन बारिश ने गड़बड़ कर दिया।
अरुण जी आपके सवाल पे मलय जी कुछ कहना चाहते हैं।
अरुण जी हमें ये बताइए कि अगर डकवर्थ लुईस नियम लागू होता और 20 ओवर में 148 रन भारत को बनाने होते तो क्या भारत बना लेता?
बारिश नहीं आती सर, वो कुछ नहीं होता। वो
ऐसा होता तो वैसा होता।
आप भी वही कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ये ना होता तो वो ना होता, है ना? तो अभी तो ये है, अभी तो ये है कि हमें टीम इंडिया को पूरा श्रेय देना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने खेला, अंक तालिका में शीर्ष पर रहे, बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, और हार और जीत तो जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं।
मलय जी सवाल पर लौट रहा हूँ, क्या कोच पर गाज गिरेगी इस नतीजे के बाद, जिस तरह से भारत सेमीफाइनल में हार कर बाहर हुआ है?
देखिए अगर आप किसी को बलि का बकरा बनाना चाहें तो ढूंढ लें, चाहे वो कोच हो,
जिम्मेदारी तो बनती है,
लेकिन जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, टीम टीम के रूप में खेलती है, टीम प्रबंधन में कोच ही नहीं होता, असिस्टेंट कोच होते हैं, कोच होता है, कप्तान होता है, उप कप्तान होता है, खिलाड़ी होते हैं,
सब मिलकर। इनकार नहीं करेंगे कि सेमीफाइनल तक भारत की राह आसान मानी जा रही थी और असल मुकाबला वही था जिसमें आप हार गए?
नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि परिस्थितियों का आकलन और टीम का चयन जिस प्रकार से हुआ, उस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगने लाजमी हैं,
लगेंगे
इसमें कोई शक नहीं है कि आपके ऊपर सवालिया निशान लगेंगे और आपकी भूमिका पर लगेंगे। दिनेश कार्तिक को आपने टीम में क्यों रखा, ये सवाल पूछा जाएगा। धोनी को आपने सातवें नंबर पे क्यों भेजा, ये सवाल पूछा जाएगा। चौथे नंबर के बारे में आपके मन में अभी तक तय क्यों नहीं था कि कौन जाएगा। विजय शंकर को क्या सोचकर आप ले गए थे, उन्हें क्यों नहीं चौथे नंबर पर उतारा, ये पूछा जाएगा। दिनेश कार्तिक को क्यों रखा, ये पूछा जाएगा। इस तरह के सवाल तो पूछे जाएंगे
और सवाल कोच और कप्तान से ही पूछे जाएंगे,
कोच और कप्तान से ही पूछे जाएंगे।
अच्छा मलय जी, आपको लगता है कि शुरुआती दौर में इंग्लैंड ने भारत को इसी तरह की रिहर्सल कराई थी जिसे भारत समझ नहीं पाया, एक तरह का वेकअप कॉल था जो भारत और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था और वही न्यूजीलैंड और भारत के बीच तस्वीर बन गई?
देखिए ऐसा होता है कि वेकअप कॉल जब आप लगातार टीम जीतती रहती है तो एक तरह का जो अति आत्मविश्वास हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, उसमें वेकअप कॉल की बड़ी सार्थक, बड़ी ही बढ़िया सकारात्मक भूमिका होती है। अगर आप देखें इंग्लैंड हार गया, पाकिस्तान से हार गया, उसके बाद जो वापसी की है कि अभी वो फाइनल में जाने पे किस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूत दावेदार है इस बार विश्व कप का, बहुत मजबूत, तो जो उसने वापसी की, तो अगर वेकअप कॉल आपको मिले, आपको जगाने की कोशिश की जाए और आपकी नींद खुल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आपको एक जगह जो बिल्कुल आपने आंखें बंद कर ली वो ये था कि पता नहीं क्यों आपने चौथे नंबर की समस्या पहली को सुलझाया नहीं।
आपको लगता है कि धोनी और नंबर चार की समस्या अब इसके बाद कुछ हल निकलेगा या ये अभी भी जारी रहेगी?
हल निकालना होगा, नहीं निकलने से टीम में स्थिरता नहीं आएगी।
एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता चलूं मलय जी, आप ही के शब्दों में, अब आपकी चवन्नी कल किस पर होगी, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड?
देखिए मुझे लगता है कि बहुत ही कांटे की टक्कर होगी, मगर इंग्लैंड की टीम कागज पर न्यूजीलैंड की टीम से बेहतर दिखती है।
तो कल कैसा मुकाबला उम्मीद कर रहे हैं आप?
देखिए मैंने कहा कि कांटे की टक्कर होगी और दोनों टीमें पूरी ताकत लगाएंगी, दोनों पहले विश्व कप कभी नहीं जीती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि क्रिकेट की जीत होगी, चाहे दोनों में से कोई जीते, मगर फिर मैं कहूँगा कि पलड़ा भारी दिखता है इंग्लैंड का।
और वो क्या वजह दिखती है आपको जिसकी वजह से इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है?
सॉलिड ठोस टॉप ऑर्डर, बढ़िया गेंदबाजी।
और न्यूजीलैंड की क्या कमजोरियां हो सकती हैं जो उसे?
न्यूजीलैंड की कमजोरी ये है कि वो बहुत सहम कर खेल रहे हैं, अंडरडॉग्स की तरह खेल रहे हैं,
या इसे ये भी कह सकते हैं कि बहुत संभल कर खेल रहे हैं।
संभलना एक हद तक ठीक है, लेकिन संभलने के बाद गिर जाना ठीक नहीं होता।
बहुत शुक्रिया मलय जी, इसी के साथ वक्त हो चला है इंडिया बोल को विराम देने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए, चर्चा को सार्थक बनाया,
धन्यवाद,
और तमाम श्रोताओं का धन्यवाद, और हमेशा की तरह माफ़ी चाहूँगा उनसे जिन्हें हम चाहकर भी कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके। लेकिन एक हफ्ते के बाद अगले शनिवार फिर एक नए विषय के साथ इंडिया बोल लेकर हाजिर होंगे दोबारा। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरें पल पल बदल रही हैं और पल पल बदलती खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। शुभ रात्रि।